بسم الله الرحمن الرحیم. سامعین محترم، آج کی گفتگو کا عنوان کہ آئمہ طاہرین صلوات اللہ علیہ مجمعین ہر زبان میں گفتگو کرنا جانتے ہیں یا ہر زبان کو جانتے ہیں؟ جن حدیہ نے برحق کو خداوند عالم نے زمین پر اپنی حجت اور اپنا نائب قرار دیا ہے، اور وہ خداوند عالم کے لطف و کرم سے ہر زبان میں گفتگو کرتے ہیں، تو اس سلسلے میں سینکڑوں واقعات کتابوں کے اندر موجود ہیں. ہم یہاں کچھ واقعات پیش کرتے ہیں. قرب الاسناد میں محمد بن خالد تیالسی کی روایت ہے کہ جناب ابو بصیر نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو کر علامات امامت کے بارے میں دریافت کیا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت سی علامتیں بیان کیں، جن میں سب سے مقدم یہ تھی کہ جو امام اس وقت موجود ہیں وہ اپنے بعد آنے والے امام کی نشاندہی فرمائیں. لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ عَلِيًّا وَعَرَّفَهُ النَّاسُ وَكَذَلِكَ الْأَئِمَّةُ يُعَرِّفُونَهُمُ النَّاسُ وَيَنْسِبُونَهُمْ لَهُمْ حَتَّى يَعْرِفُوهُ وَيُسْأَلُوا وَيُجِيبُوا. کیونکہ حضرت رسول خدا نے حضرت علی کو اپنے بعد کے لیے نصب فرمایا اور لوگوں کو انہیں پہچنوایا. اسی طرح سے تمام آئمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین اپنے بعد والے امام کو پہچانواتے ہیں اور انہیں نصب فرماتے ہیں تاکہ لوگ پہچان لیں اور ان سے سوال کریں تو وہ جواب دیں. وَيُغْبِرُ النَّاسَ بِمَا فِي غَدٍ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ بِكُلِّ لِسَانٍ. آنے والے دن جو کچھ ہونے والا ہو لوگوں کو اس کی اطلاع دیتے ہیں اور ہر زبان میں گفتگو کرتے ہیں. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر کو مخاطب کیا اور فرمایا، تمہارے اٹھنے سے پہلے تمہیں ایک علامت دکھاتا ہوں جس سے تمہیں اطمینان ہو. ابو بصیر کہتے ہیں کہ ابھی ہم بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ ایران سے ایک خراسانی شخص امام علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے عربی زبان میں گفتگو شروع کی، جس کا جواب امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فارسی میں دیا، جسے سن کر وہ خراسانی کہنے لگا کہ میں تو اپنی زبان میں صرف اس خیال سے گفتگو میں نے نہیں کی تھی کہ شاید آپ فارسی زبان اچھی طرح سے نہ جانتے ہو. یہ سن کر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سبحان اللہ اذا كنت لا احسن اجيبك فما فضلي عليك. سبحان اللہ، اگر میں تمہیں اچھی طرح سے جواب نہ دے سکوں تو تم پر میری فضیلت ہی کیا ہوئی. اس کے بعد امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بصیر کو مخاطب کیا اور فرمایا، یا ابا محمد ان الامام لا يخفى عليه كلام احد من الناس ولا طير ولا بهيمه ولا شيء فيه روح بهذا يعرف الامام فان لم تكن فيه هذه الخصال فليس هو بامام. اے ابو محمد، امام پر کسی کا کلام مخفی نہیں رہ سکتا، نہ کسی آدمی کا، نہ کسی پرندے کا، نہ کسی چوپائے کا، نہ کسی اور ذی روح کا. اسی سے امام کو پہچان لیا جائے گا. اب اگر اس میں یہ صفات نہ ہو تو وہ امام ہی نہیں. اس حدیث کو بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے جلد نمبر 25 پہ نقل کیا. جناب ابو سلط حراوی کا بیان ہے کہ حضرت امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے انہی کی زبان میں گفتگو فرمایا کرتے تھے اور ہر زبان و لغت کے سب سے زیادہ فصیح انسان بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر زبان کو اس کے تمام اہل زبان سے زیادہ جانتے تھے. میں نے ایک روز ان کی خدمت میں عرض کیا کہ فرزند رسول، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ آپ گوناگو زبانوں سے اس قدر عمدہ واقفیت رکھتے. یا ابا سلط، انا حجت اللہ، امام نے فرمایا، یا ابا سلط انا حجت اللہ علی خلقه وما کان اللہ لیتخذ حجتا علی قوم وهو لا یعرف لغاتهم. اے ابو سلط، میں اللہ کی طرف سے اس کی تمام مخلوقات پہ حجت ہوں، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ خداوند عالم کسی قوم پر ایسے شخص کو حجت بنا کر بھیجے جو ان لوگوں کی زبانیں ہی نہ جانتا ہو. اس حدیث کو عیون اخبار رضا میں شیخ صدوق نے نقل کیا. اجو اس سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ابو حمزہ کی روایت ہے کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حبشی غلام سے حبشی زبان میں گفتگو فرمائی. میں نے عرض کیا، مولا میں نے دیکھا کہ آپ اس غلام سے اہل حبشہ کی زبان میں گفتگو کر رہے تھے. امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شاید تمہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ میں نے حبشی زبان میں ان سے گفتگو کی. تعجب نہ کرو، फमा खफिया अलीक मिन अम्र अल इमाम अजबो व अक्सर वमा हाजा मिन अल इमाम फी इल्म इल्ला कतीर अखदा बिमिन कारही मिन अल बहर कतरत मिन मा अफतर अल्लजी अखदा बिमिन कारही नकसा मिन बहर शैयन। इमाम अलैहिस्सलाम के बारे में जो बातें तुमसे पोशीदा हैं वो बहुत हैं और नहायत ही हैरत अंगेज है, और जो कुछ तुमने देखा है वो तो इमाम के इल्म के लिहाज से ऐसा ही है जैसे कोई परिंदा अपनी चोंच समंदर में डुबोकर एक कतरा पानी ले ले, क्या इसकी चोंच में आने वाले पानी से समंदर में कुछ कमी आ जाएगी। इस रिवायत को भी कुर्बुल असनाद में आप मुलाजा फरमा सकते हैं। इस सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं, एक और रिवायत पेश करते हैं, और जनाबे अली बिन महदियार का बयान है कि मैंने इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की खिदमत में एक सकलाबी गुलाम को भेजा। जब वो वापस आया तो इंतहाई हैरतजदा था। मैंने उससे पूछा कि बेटे क्या हुआ, कहने लगा कि मैं कैसे हैरतजदा ना हूँ कि इमाम एक इमाम अरब हैं और मैं सकलाबी हूँ, और मुझसे सकलाबी जबान में ऐसे लहजे में गुफ्तगू कर रहे थे कि जैसे वो खुद सकलाबी हों, ना जबान में कोई फर्क था ना लहजे में। इस रिवायत को हम किताबे अल इख्तिसास में मुलाहजा कर सकते हैं। जनाब अम्मार सबाती का सामईन बयान है कि हजरत इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने मुझसे नबती जबान में एक बात फरमाई, तो मैंने इमाम अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, नब्त के लोगों में से मैंने किसी की जबान आपसे ज्यादा फसीह नहीं देखी, आप तो गैर मामूली तौर पर फसीह नबती में बात कर रहे हैं। तो इमाम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अम्मारो व कुल्लु लिसान, ए अम्मार हर जबान के साथ ऐसा ही है। अबू यजीद फरकत का बयान है कि मैं इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की खिदमत में था, आप अलैहिस्सलाम ने एक अजमी गुलाम को किसी काम के लिए भेजा, जब वो वापस आया तो मैंने महसूस किया कि इसकी समझ में नहीं आ रहा कि इमाम को क्या बता, किस तरह बात करें। इसकी हालत को देखकर इमाम ने फरमाया, चकल्लम बेअय्य लिसानिन शिअत फइन्नी अफहमु अनक। इमाम फरमाते हैं कि जिस जबान में चाहो बात करो, क्योंकि तुम जो कुछ कहोगे मैं उसे समझ लूंगा। एक और रिवायत के मुताबिक एक शख्स इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने सुना, आप सुरियानी जबान में मनाजात पढ़ रहे हैं। जब उस शख्स ने इस मनाजात के बारे में इमाम से दरियाफ्त किया तो आपने फरमाया, ये फला पैगंबर की मनाजात है। अबू जारूद ने इमाम बाकिर से इसी मजमून की रिवायत की, व युकल्लिमुन्नास बिकुल्लि लिसानिन व लुगतिन, इमाम लोगों से हर जबान और हर लुगत में गुफ्तगू करते। ये बात मंतकी तौर पे भी बिल्कुल वाज़ह है, क्योंकि इमाम किसी एक इलाके या किसी एक मुल्क के लोगों के लिए नहीं होता, बल्कि वो तमाम बनी नौ इंसान के लिए इमाम होता है। जैसा कि खुदावंद आलम ने जनाब इब्राहिम से फरमाया कि इन्नी जाएलुकल इन्नास इमामा, मैं तुम्हें तमाम इंसानों का इमाम मुकर्रर कर रहा हूं, और चूंकि इमाम तमाम बनी नौ इंसानी के लिए होता है, चाहे वो इंसान किसी मुल्क में रहता हो, कोई भी जबान बोलता हो, तो जब कोई शख्स अपने इमाम की खिदमत में हाजिर हो और इमाम से गुफ्तगू करना चाहे तो अपने मुद्दे को अपनी जबान में ही ज्यादा बेहतर अंदाज से पेश कर सकता है। और इमाम अलैहिस्सलाम भी जब इसकी जबान और इसके लहजे में जवाब देंगे तो वो शख्स इस मतलब को ज्यादा बेहतर अंदाज से समझ भी सकता है, और दरमियान में किसी भी इंटरप्रेटर की किसी भी मुतरजिम की जरूरत पेश नहीं आएगी, ताकि अगर आने वाला कोई ऐसी राज की बात बयान करना चाहे जिसके बारे में वो ये ना चाहता हो कि किसी तीसरे शख्स को इत्तला हो, तो वो बहुत आसान है कि इमाम से मुलाकात करके अपने दिल की बात कर सकता है। दुनिया के सरबराह ने मुमलिकत जब किसी और मुल्क में जाते हैं तो वहां के सरबराह से बात करने के लिए उन्हें बेशतर मकामात पे ऐसे मुतरजिम की जरूरत पेश आती है जो दोनों मुल्कों की जबान जानता हो, लेकिन हमारे आइम्मा ताहरीन सलावातुल्लाह अलैहिम अजमईन किसी मुल्क में भी जाएं, जैसे हजरत इमाम जमान अज्जल अल्लाह ताला फरज शरीफ जहूर के बाद दुनिया के किसी मुल्क में जाएं, तो आपको किसी मुतरजिम की जरूरत पेश ना आएगी। सामईन मोहतरम, यहां तक तो हमने वो मिसालें पेश की जिनमें इस बात का तذکرہ था कि आइम्मा ताहरीन सलावातुल्लाह अलैहिम अजमईन मुतअद्दिद ज़बानें बोलते हुए नजर आए और मुख्तलिफ मुल्कों के लोगों से उन हजरात ने उन्हीं की जबान में गुफ्तगू की, और जब इमाम किसी से गुफ्तगू फरमाते हैं तो आपका लहजा उस जबान के बोलने वाले अहले जबान से ज्यादा फसी होता है। लेकिन हमने जो बातें रिवायात और अहदीस पेश की, ये सारी की सारी इंसानों से गुफ्तगू में मुतालिक थी। हमें तो तारीख में ऐसी भी मिसालें मिलती हैं कि हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम हैवानात से भी गुफ्तगू फरमाई। तारीख में मिलता है कि इन इन हस्तियों ने हैवाना से भी गुफ्तगू फरमाई। इस सिलसिले में गुफ्तगू को तूलानी होने से बचाने के लिए यहां पर हम बस एक मुख्तसरन एक से दो मिसालें आपकी खिदमत में पेश करते हैं कि जिनमें से एक का ताल्लुक हुजूर अकरम से है और दूसरी मिसाल का ताल्लुक आप अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक जानशीन बरहक इमाम अलैहिस्सलाम से। कुतुब रावंदी की रिवायत है कि हजरत रसूल खुदा एक दिन किसी सहारा से गुजर रहे थे, आपके कानों में आवाज आई, या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह, जबकि वहां कोई इंसान मौजूद न था। अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिरनी को देखा जिसे किसी ने बांध रखा था। आप अलैहिस्सलाम उसकी तरफ मुतवज्जे हुए तो हिरनी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया कि एक अराबी ने मुझे पकड़ के बांध रखा है जबकि मेरे दो छोटे छोटे बच्चे सामने वाली पहाड़ी पर है, आप मुझे इजाजत फरमा दें, मैं वादा करती हूं मैं इन बच्चों को दूध पिला के वापस आ जाऊंगी। नबी आखिर जमान ने फरमाया कि वादा करती हो ऐसा करोगी? वो बोली अगर मैं ऐसा ना करूं तो मुझ पर अल्लाह का आजाब नाजिल हो। ये सुनकर नबी आखिर जमान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आजाद कर दिया। वो हिरनी गई और अपने बच्चों को दूध पिलाकर बिला ताखीर वापस आ गई। हुजूर अकरम ने इसे फिर उसी जगह पे बांध दिया जहां उस अराबी ने उसे बांधा था। जब वो अराबी आया और उसको ये सब बातें मालूम हुई तो उसने हुजूर अकरम नबी आखिर जमान से अर्ज किया कि या हजरत इसे मुकम्मल तौर पे आजाद फरमा दीजिए कि इसका जहां जी चाहे चली जाए। आ हजरत ने इसे आजाद फरमा दिया। वो हिरनी ये कहती हुई रवाना हुई कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम के बारे में जलील कदर बुजुर्ग शेख जामी की एक रिवायत है। एक रोज आप अपनी सवारी पर कहीं जा रहे थे और आपके हमरा एक और शख्स अपनी सवारी पर आपके साथ चल रहा था। मक्का और मदीना के दरमियान जो पहाड़ियां हैं उनमें से किसी एक पहाड़ी से एक भेड़िया नमूदार हुआ। इमाम अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी रोक ली तो वो भेड़िया इमाम के पास आया और गुजारिश की कि मौला इस पहाड़ी में मेरी मादा है, वो इस वक्त सख्त तकलीफ में है, इसके हक में दुआ फरमाइए कि इसे परेशानी से निजात मिले। इमाम ने दुआ फरमा दी। फिर उसने अर्ज की कि यह भी दुआ फरमाइए कि मेरी नस्ल में से किसी को आपके शियों पर तसल्लुत ना हो और वो उसे अजियत ना पहुंचा। चुनाचे इमाम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमा दी, इसके बाद वो चला गया। इस रवायत से जहां ये बात वाजे होती है कि दरिंदे भी इमाम वक्त को पहचानते हैं और इनकी दुआओं की तासीर से वाकिफ है कि इस भेड़िए ने अपनी मादा की तकलीफ दूर होने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम से दुआ की दरख्वास्त की। इसी के साथ ये बात भी वादे होती है कि खूंखार जानवर भी शियाने अहले बैत की मंजिल से बाखबर है। चुनांचे इस भेड़िए ने इमाम से ये भी दरख्वास्त की कि इसकी नस्ल से जो भी भेड़िया आए दुनिया में वो अहले बैत के चाहने वालों को तकलीफ ना पहुंचाए। और इस तरह के वाकयात से इस्लामी दुनिया की किताबें मालामाल हैं, खुसूसन वो किताबें जो हजरात आइम्मा ताहिरीन सलावातुल्लाह अलैहि मजमईन और उनके मौजजात से ताल्लुक रखती हैं, जिनमें आपने मुख्तलिफ इलाकों के लोगों से उनकी जबानों में गुफ्तगू की, नेज हैवानात यहां तक के अशजार से भी आप हजरात की गुफ्तगू का तस्करा मौजूद है।